प्रदर्शन कला की एक शैली है हास्य व्यंग। हास्य एक नाटकीय काम है, जब कॉमेडी में साहित्यिक, जब कॉमेडी में सामाजिक आलोचना का लक्ष्य होता है तो वो व्यंग की श्रेणी में आ जाता है। व्यंग रचनाएं या व्यंग प्रस्तुति हमारे भीतर सिर्फ गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने भी लाकर खड़ा कर देती है, जो हमारे सामने आए दिन हो रही होती हैं। तो व्यंग समाज की पीड़ा को अभिव्यक्ति भी देता है और समाज को उद्वेलित कर उसे झिंझोड़ता भी है। असली व्यंग वही है जो अंतस को गहरे तक स्पर्श करे। तो आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मेलबर्न की आरती विंसेंट के साथ, जो इस समय मेलबर्न में चल रहे मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में भाग ले रही हैं। तो उनके साथ में कुछ बातचीत की है, जानते हैं उनकी इस अनोखी प्रदर्शन कला के बारे में। आरती जी नमस्कार।
नमस्कार अनिका जी, देखिए थैंक यू फॉर हैविंग मी।
देखिए आपके नाम से ही, जैसे ही मैंने शुरुआत किया ना, मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट पहले से ही आ गई है और मैं समझ गई हूँ कि आप इस बातचीत के दौरान हमें खूब हंसाने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है आपसे कि आप थिएटर की दुनिया से थी, तो ये जो स्टेज पे आकर लोगों को हंसाने का काम जो शुरू हुआ, थिएटर में तो एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें आपके पास में अलग अलग तरह के रोल करने होते हैं, लेकिन ये एक ही रोल है आपके पास में, तो ये ट्रांजिशन आपका कैसे हुआ?
जैसा कि आपने बोला, मैं थिएटर से हूँ और मैंने ही आपको बताया था ये
जी
तो हाँ, मैं बहुत थिएटर करती थी दिल्ली में, थोड़ा सा बैरी जॉन के साथ किया, थोड़ा सा यू नो रंजीत कपूर के साथ किया, और हम लोग ना लाइक वहाँ पे इंग्लिश ड्रामा, फ्रेंच फार्सेस, रशियन प्लेज उठा के किया करते थे, यू नो। तो लाइक हर कोई, और आपको तो पता है हम लोग सब कैसे दिखते हैं, यू नो, सभी इंडियन दिखते हैं, सभी का एक ही एक्सेंट होता है, तो कोई भी जॉन प्ले कर लेता था, कोई भी मार्गरेट प्ले कर लेता था, यू नो, कोई भी रोजी बन जाती थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही साउंड करते थे हम लोग, जैसे हमारा एक्सेंट है, यू नो, इंडियन एक्सेंट कैसे होता है। तो यहाँ आई मैं, मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मेरे को थिएटर पे फोकस करना है। 10 दिन के अंदर अंदर आते मैंने न्यूज़पेपर में देखा एक ब्रिटिश फैमिली पे बेस्ड प्ले पे ऑडिशन हो रहा था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में भी बेस्ड था।
अच्छा।
तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने इसके लिए जाके ऑडिशन करती हूँ। उसने मुझे बोला कि ये तू तो सिलेक्ट नहीं होगी। मैंने बोला क्यों, मैं तो बड़ी अच्छी एक्टर हूँ, मैं तो जरूर हो जाऊंगी। मैं चली गई ऑडिशन के लिए। सोचो मतलब एक ऐसी फैमिली जो ब्रिटिश फैमिली है, जो ग्रेट ब्रिटेन में रहती है, उसके ऊपर बेस्ड प्ले है, और मैं चली गई ऑडिशन के लिए ऐसी दिखती हुई, यू नो, इंडियन दिखती हुई, इंडियन एक्सेंट में ऑडिशन करके आई। 2 हफ्ते के बाद फोन आया कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। तो मेरे को तो फिर भी समझ में नहीं आई क्यों नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है दोबारा कहीं और ट्राई करेंगे। फिर मैंने नौकरी करना शुरू किया, और फिर जब कल्चर का समझ में आया ना, यहाँ के रहन सहन का, तो मुझे समझ में आया अरे मैं कैसे फिट होती इंग्लिश फैमिली में, ब्रिटिश फैमिली में कहाँ हो सकती थी। तो मेरे को समझा ओहो ये तो मैं गलती हो गई। अरे मुझे अभी भी हंसी आती है ये सोचे कि मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैं कैसे ऑडिशन के लिए चली गई। वो लोग भी सोच रहे थे ये सोच के क्या आई है यहाँ पे
जी।
सो फिर मैं उसके बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ टीवी प्रोड्यूसर। उसमें मैं बिजी हो गई काम करते करते, तो ये थोड़ा फिर से बैक बर्नर में चला गया थिएटर का करना। फिर आई बिकेम अ मदर, यू नो, माँ बनने के बाद मैंने कहा अब 4-5 साल हो गए थे, मैंने कहा अब ये बहुत हो गया मम्मी मम्मी खेलना, अभी कुछ काम किया जाए, यू नो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और यू नो लाइक मैंने सोचा अब मैं फोकस करती हूँ एक्टिंग में। मैंने कहा ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं कर सकूं स्टेज पे जा सकूं, क्योंकि आई लव स्टेज, मुझे स्टेज पे बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है मुझे, यू नो। लोग पूछते हैं अरे आपको नर्वसनेस नहीं होती, मैंने बोला नहीं मुझे नर्वसनेस नहीं होती, यू नो। अब नर्वसनेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता,
आप उसकी चिंता ना करें आपकी इस बात से हम घबराने लग जाएंगे
तो मैंने कहा ठीक है मैं ना स्टैंड अप कॉमेडी को ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ही लिखना है, मेरे को ही स्टेज पे जाना है, मेरे को ही करना है, यू नो। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि कोई मुझे कास्ट करेगा तो मैं एक्टिंग करूंगी स्टेज पे, ये मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा लिखना शुरू किया, करना शुरू किया, एंड उस तरह से मेरी ये शुरू हुई,
हाँ
शुरुआत हुई। हाँ
जी, और आप कॉमेडी कर लेंगी या उसमें जो कहते हैं ना सरकाज्म होता है कॉमेडी में, वो आप ले आएंगी, क्योंकि अभी तक तो आप थिएटर कर रही थी पहले, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ गया, सेंस ऑफ ह्यूमर का?
तो जब मैं थिएटर करती थी ना, आई मुझे कॉमेडिक रोल्स बहुत अच्छे लगते थे और वो मैं बहुत अच्छे से भी करती थी। मैंने काफी सीरियस रोल्स भी किए, उसको ट्रेन करने में ना डायरेक्टर भी की भी वाट लग जाती थी। वो भी बोलता था कि भैया इसका क्या करूं, और जो कॉमेडिक रोल्स होते थे मैं 2 मिनट में पकड़ लेती थी। सीरियस रोल्स भी बहुत अच्छे से करती थी, बट उसमें मेरे को टाइम लगता था ढलने में, बहुत टाइम लगता था। बट कॉमेडिक रोल्स में मुझे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरली आ जाता था मुझे।
तो वो टैलेंट तो आपके पास?
यस, हमेशा से ही था, लाइक हमेशा से, लाइक फ्रॉम माय फर्स्ट प्ले, जो पहला मैंने प्ले किया था, वहां से लेकर मैंने देखा कि कॉमेडी रोल्स में डायरेक्टर को कुछ डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो पहले ही बोलते थे दैट्स परफेक्ट, ये एकदम ठीक है
जी।
बाकी के रोल्स में वो बहुत हार्ड वर्क करते थे मेरे साथ।
हाँ, और वैसे कहते हैं ना कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, फनी होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें हंसा तो जरूर देते हैं और हमें कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट सरकाज्म होता है। तो ये जो कहानियां हैं आपको कहाँ से मिलती हैं, मतलब किसमें से क्या मिल जाता है?
देखिए मैं आपको सच सच बताती हूँ, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आपने बोला वो बहुत ही जोकीले होते हैं। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, जोकीले, आप तो बड़े जोकीले हैं, आप तो बड़े मजाकिया हैं, तो बट बोलते हैं जोकीले, यू नो, आप बड़े जोकीले हो।
बिल्कुल,
हम मजाकिया नहीं बोलते हैं, ना ही हम फनी बोलते हैं, हम बड़े जोकीले हो, बड़े जोकीले। बट हाँ, मतलब हम लोग को, अब जैसे घर में कुछ हो गया, मेरे मम्मी ने कुछ कह दिया, तो उसको हम उठाते हैं और उसमें थोड़ा सा तो नमक और मिर्च डालते हैं हम, उसको फनी बना, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे ही बताऊंगी तो वो फनी है बट उतना जोकीला नहीं है वो, यू नो। बट जो नमक मिर्च डाल देते हैं ना, थोड़ा मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के, उसको और भी हम जोकीला बना देते हैं। सो यहीं से ही हमको मटेरियल मिलता है, जैसे मम्मी ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, बेटी ने कुछ कह दिया, यू नो, उसमें फिर फनी दिख जाता है और फिर उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके, थोड़ा सा यू नो बढ़ा चढ़ा के उसको और फनी बना देते हैं। कुछ न्यूज में मिल जाता है, यू नो, क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास।
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि कोई भी जो कॉमेडी है या जो सरकाज्म है वो एक सीमा तक रहे। आप जो वो लाइन लगानी पड़ती है उसके लिए आप क्या सोचती हैं, कहाँ पर रुकना है हमें, क्योंकि सामने वाले की किसी भावना को ठेस?
हाँ, ये तो हर तरह के मजाक में एक ही रिस्क होता है। और एज अ कमेडियन मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग कभी भी किसी को दुख देने के लिए जोक्स नहीं करते, हमारा मकसद होता है हंसाना। अब आप जब कॉमेडी देखने आते हैं तो आपको उस माइंड सेट के साथ आना चाहिए कि हम लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे व्यूज नहीं है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है लोगों के, आसपास के लोगों की, यू नो, सो इट इज वेरी रिलेटेबल। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो कि यू नो इंट्यूटिवली पता चल जाती हैं कि अरे ये थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे तो गलत बात हो जाएगी, तो वो एक इंट्यूशन होता है, एक डिसर्नमेंट होता है जो कि आप खुद ही यूज कर सकते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जब कॉमेडी देखने जाते हैं तो एक ओपन माइंड के साथ जाइए, ओपन हार्ट के साथ जाइए, कुछ पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि एक कॉमेडियन के लिए हर किसी को खुश करना, हर किसी के फीलिंग्स का ध्यान रखना इज इम्पॉसिबल। अब जैसे मैं अपने हस्बैंड के ऊपर जोक्स करती हूँ, उसके फीलिंग्स हर्ट नहीं होते हैं, वो मुझे पता है।
मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि अक्सर यही होता है कि जो घर के लोग होते हैं ना, उन्हीं के आसपास जोक्स बनते हैं। क्या कोई सेंसिटिव कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि कभी कोई उल्टा पड़ गया आपको?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो ये सिर्फ जोक है, एंड कुछ तो चीजें होती हैं जो खुद ही वो मतलब हंसते हैं उनके ऊपर। लास्ट मैंने जब शो किया था लास्ट ईयर, उसके अंदर वो अपने फ्रेंड्स को लेके आए थे ये बोल के कि पूरे शो में मेरे पे ही हंस रही है ये, सब लोग मुझ पे ही हंसते, मेरे ही मजाक बना रही है ये, चलो जाके देखो यू नो। तो उसके भी काफी फ्रेंड्स आ गए ये देखने के लिए कि अपने हस्बैंड का कैसे मजाक उड़ा रही है यू नो। तो बट दैट्स द थिंग यू नो कि यू जस्ट आपको बस यही देखना है कि दिल पे मत लो कुछ चीजें यू नो। कुछ चीजें होती हैं बट नो वन वांट्स टू हर्ट देयर। अब जैसे आजकल ये भूख चल गया कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग देन ओनली आप तभी वो जोक क्रैक कर सकते हो। लाइक मैं इंडियंस के ऊपर मजाक उड़ा सकती हूँ यू नो, वो भी थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है।
अब मैं ये तो नहीं कहूंगी आपसे कि आप हमारे लिए एक पूरा शो कर दें, लेकिन कुछ तो हमें भी अनुभव होना चाहिए ना, थोड़ी सी झलक आप हमारे लिए भी कर दीजिए।
चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो जोक है ये मेरी मॉम से लाइक यू नो मॉम ने एक बार मुझे बोला था, आप इससे रिलेट कर पाएंगे और हमारे सारे श्रोता सुनने वाले भी इससे रिलेट कर पाएंगे, काफी जो इंडियन हैं जो उस टाइम से इंडिया में रह रहे हैं यू नो, कि हम लोगों में ईस्टर नहीं मनाया जाता यू नो। दिल्ली में कौन ईस्टर मनाता है? और मेरी मम्मी को कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था ईस्टर गुड फ्राइडे का, कुछ मतलब नहीं समझ में आता था उनको। हिंदू फैमिली यू नो आप समझ सकती हैं वो कौन से जनरेशन की है यू नो। सो मेरी शादी हुई कैथोलिक क्रिश्चियन के साथ जो कि इंडियन है बट कैथोलिक क्रिश्चियन है मलयाली मल्लू। तो फर्स्ट तो ये मेरा जोक ऐसे ही चलता है यू नो कि बोथ द फैमिलीज हम दोनों के जो परिवार है उन्होंने बहुत अच्छे से यू नो कोशिश की एक दूसरे का कल्चर अडेप्ट करने के लिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया गुड फ्राइडे वाले दिन, शादी के बाद पहले त्योहार मनाते हैं ना हम लोग, पहला साल जो होता है हर त्योहार मनाया जाता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे गुड फ्राइडे दिन सुबह सुबह फोन किया, फोन करके बोलती है हैप्पी गुड फ्राइडे। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा भैया आपने मेरे इन-लॉज को फोन करके भी विश कर दिया क्या?
थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी हो गया सब कुछ।
हाँ, कर दिया ये कांड आपने। तो बोलती नहीं 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 मैंने सोचा मैं तुझे अभी करती हूँ, वो लोग तो सो रहे होंगे ना। तो फिर मैंने उनको समझाया सारा गुड फ्राइडे का इंसिडेंट यू नो क्या मतलब होता है और ईस्टर संडे का क्या मतलब होता है। फिर वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलो तूने बहुत अच्छा किया मुझे समझा दिया, अब मैं उनको फोन करके बोलूंगी सो सॉरी टू हियर अबाउट गुड फ्राइडे। इतना भी कोशिश मत करो यार कल्चर में ढलने की यू नो।
मतलब एक एक मासूम सी इग्नोरेंस जो है वो कभी कभी कितनी
हाँ फनी भी हो सकती है। हाँ. कितनी मतलब यू नो
बिल्कुल दो दिन पहले की दुख को क्या याद करना जब सुख आगे दिख ही रहा है। तो आरती जी मन तो बहुत था कि आपके साथ में बहुत सारी बातें करूं और बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश भी कर रही थी। आप थिएटर से हैं और एक तरह से वापस थिएटर में ही हैं। इस थिएटर में ये है कि इसमें थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से मसाला डाला हुआ होता है। तो आपकी ये जो मसाले भरी जिंदगी है ना ये बस ऐसे ही खट्टी मीठी तीखी चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद आपके इतने अच्छे विशेष के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।